नमस्ते, मैं आरफ हूँ। 9 Art Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डेविड बार्नेट की पुस्तक केबलिंग द कंप्लीट गाइड टू नेटवर्क वायरिंग नेटवर्क केबलिंग की योजना स्थापना और जांच पर केंद्रित एक व्यावहारिक तकनीकी मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक उस भौतिक अवसंरचना को केंद्र में रखती है जिसके सहारे किसी संगठन का डेटा चलता है, लेकिन जिसे अक्सर नेटवर्क के सक्रिय उपकरणों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। तीसरे संस्करण में बार्नेट ने डेविड ग्रोथ और जिम मैकबी के पूर्ववर्ती कार्य के परामर्श के साथ तांबे, कोएक्सियल और फाइबर आधारित केबलिंग, कनेक्टर, केबल पथ, टर्मिनेशन तथा परीक्षण की बुनियादी और अनुप्रयुक्त बातें समेटी हैं। इसका उद्देश्य केवल पहचानना नहीं, बल्कि नेटवर्क की जरूरत, भवन की संरचना, प्रदर्शन सीमाओं और रखरखाव को जोड़कर भरोसेमंद प्रणाली बनाना है। उस्तत तकनीकी सिद्धांतों जैसे बैंडविड्थ, क्षीणन, प्रतिबाधा और क्रॉसटॉक को इंस्टॉलेशन के वास्तविक निर्णयों से जोड़ती है, इसलिए इसका स्वर पाठ्यपुस्तक और फिर संदर्भ पुस्तिका दोनों जैसा है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, नेटवर्क की विश्वसनीयता में भौतिक केबलिंग की केंद्रीय भूमिका। पुस्तक का आरंभिक और सबसे उपयोगी विचार यह है कि नेटवर्क को केवल सर्वर, स्विच या सॉफ्टवेयर से नहीं समझा जा सकता। डेटा तक पहुंचने के लिए संकेतों को वास्तविक माध्यम से गुजरना पड़ता है और वही माध्यम केबलिंग है। प्रकाशकीय फाइबर हो या तांबे की चार जोड़ी वाली केबल, उसकी गुणवत्ता, लंबाई, मार्ग और टर्मिनेशन नेटवर्क के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। पुस्तक इस उपेक्षा को रेखांकित करती है कि बहुत सी नेटवर्क समस्याओं का स्रोत खराब, क्षतिग्रस्त या अनुचित ढंग से लगाई गई केबलिंग होती है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि रुक रुक कर कनेक्शन टूटना, अपेक्षा से कम गति मिलना या त्रुटियां बढ़ना हर बार सक्रिय उपकरण की खराबी नहीं होती। लेखक केबलिंग को दीर्घकालिक अवसंरचना मानते हैं। स्विच बदले जा सकते हैं, लेकिन दीवारों, छतों और राइजर मार्गों में लगी केबल बदलना महंगा और विघटनकारी होता है। इसलिए शुरुआती योजना में क्षमता, पहुंच, विस्तार और दस्तावेजीकरण शामिल करना आवश्यक है। यह दृष्टि तकनीशियन को केवल तार खींचने वाले व्यक्ति की भूमिका से ऊपर उठाकर भौतिक नेटवर्क डिजाइन के जिम्मेदार निर्णयकर्ता की भूमिका देती है। दूसरा, संकेत गुणों के आधार पर केबल प्रदर्शन को समझना। यह मार्गदर्शिका केबलिंग की गुणवत्ता को केवल श्रेणी या बाहरी मोटाई से तय नहीं करती। यह बताती है कि नेटवर्क संकेतों पर बैंडविड्थ, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, धारिता, क्षीणन, प्रसार विलंब और विलंब असंतुलन जैसे गुणों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, लंबी दूरी पर संकेत की शक्ति कम होना क्षीणन है। यदि हस्तक्षेप या सिग्नल हानि सीमा से बढ़ जाए तो उपकरण जुड़े होने के बावजूद स्थिर संचार नहीं कर पाते। इसी तरह पास की तार जोड़ियों के बीच अवांछित ऊर्जा का प्रभाव क्रॉसटॉक कहलाता है, जो उच्च आवृत्ति वाले डेटा संचार में गंभीर समस्या बन सकता है। लेखक इन अवधारणाओं को इसलिए शामिल करते हैं ताकि पाठक केवल श्रेणी, दूरी और उपयोग को आपस में जोड़ सके। सही केबल का चुनाव केवल वर्तमान गति के लिए नहीं, अपेक्षित अनुप्रयोग और भविष्य के उन्नयन के लिए भी होता है। पुस्तक का उपयोगी तर्क यह है कि टर्मिनेशन के समय जोड़ियों को जरूरत से ज्यादा खोलना, केबल को तीखे मोड़ना या दबाव में रखना मूल केबल विनिर्देशों को भी निष्प्रभावी कर सकता है, अर्थात प्रदर्शन सामग्री और कारीगरी दोनों का संयुक्त परिणाम है। इस समझ से परीक्षण रिपोर्ट के आंकड़े वास्तविक स्थापना त्रुटियों तक पहुंचने का साधन बनते हैं। तीसरा, तांबा, फाइबर और कोएक्सियल माध्यमों का उपयोग आधारित चयन। पुस्तक विभिन्न केबलिंग माध्यमों को एक दूसरे का सार्वभौमिक विकल्प मानने के बजाय उनकी भूमिका और सीमाओं के आधार पर लगती है। श्रेणी 5 और श्रेणी 5E जैसी तांबे की ट्विस्टेड पेयर केबल स्थानीय क्षैतिज केबलिंग में परिचित विकल्प रही है, क्योंकि इन्हें टर्मिनेट करना अपेक्षाकृत सरल है और कार्यक्षेत्र तक पहुंचाना सुविधाजनक होता है। लेकिन दूरी, विद्युत हस्तक्षेप और आवश्यक क्षमता बढ़ने पर फाइबर ऑप्टिक केबल के लाभ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फाइबर प्रकाश के माध्यम से डेटा ले जाती है, इसलिए यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होती और भवनों या बैकबोन के लंबे संपर्कों के लिए उपयुक्त हो सकती है। कोएक्सियल केबल भी पुस्तक में शामिल है, जिससे पाठक पुराने और विशेष नेटवर्क संदर्भों में इसके कनेक्टर तथा उपयोग को समझ सके। चयन का वास्तविक प्रश्न यह नहीं कि कौन सी केबल सबसे आधुनिक दिखती है, प्रश्न यह है कि वास्तुकला में कौन सा खंड बैकबोन है, कौन सा क्षैतिज लिंक है, दूरी कितनी है, वातावरण कैसा है और रखरखाव कैसे होगा। लेखक घटकों की अनुकूलता पर भी बल देते हैं। केबल, जैक, पैच पैनल और कनेक्टर का स्तर असंगत हो तो पूरी लिंक की क्षमता कमजोर कड़ी से सीमित हो सकती है। यह अध्याय सामग्री खरीद को डिजाइन अनुशासन से जोड़ता है। चौथा, स्थापना, मार्ग निर्धारण और टर्मिनेशन में अनुशासन। कैबलिंग की स्थापना में सबसे सामान्य गलतियां अक्सर दिखाई नहीं देती क्योंकि वे छतों, दीवारों या रैक के पीछे छिपी होती है। पुस्तक केबल रन कंड्यूट क्रॉस कनेक्ट और उपकरण कक्ष जैसी व्यवस्थाओं को इसलिए महत्व देती है कि सुव्यवस्थित मार्ग भविष्य के रखरखाव और विस्तार को सरल बनाते हैं। केबल को खींचते समय अत्यधिक बल लगाना, अनुचित मोड़ देना, बिजली के स्रोतों के बहुत निकट ले जाना या बिना सहारे लटकाना उसके प्रदर्शन और आयु को प्रभावित कर सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि साफ मार्ग, उपयुक्त सहारा और नियोजित प्रवेश बिंदु बाघ की समस्या निवारण लागत घटाते हैं। टर्मिनेशन भी उतना ही निर्णायक चरण है। मॉड्यूलर जैक, बीएनसी कनेक्टर या अन्य सिरों पर चालक का सही संपर्क और जोड़ी क्रम बनाए रखना जरूरी है। क्रिम्पिंग या पंच डाउन में छोटी असावधानी खुला संपर्क, शॉर्ट या क्रॉसटॉक का कारण बन सकती है। लेखक सुरक्षा को भी स्थापना कौशल का हिस्सा मानते हैं, विशेषकर भवन संरचना, उपकरण और कार्यस्थल के संदर्भ में। इस विषय का व्यापक निष्कर्ष है कि अच्छी कैबलिंग कोई एकल कार्य नहीं बल्कि योजना, कारीगरी, मानकीकरण और भौतिक सुरक्षा का क्रम है। अंत में परीक्षण, दोष खोज और दस्तावेजीकरण की कार्य पद्धति पुस्तक कैबलिंग को लगाने के बाद उसे स्वतः सही मान लेने की प्रवृत्ति के विरुद्ध है। परीक्षण का उद्देश्य केवल यह देखना नहीं कि दोनों सिरों पर संपर्क मौजूद है। एक उपयोगी जांच यह भी स्पष्ट करती है कि लिंक अपेक्षित प्रदर्शन सीमा के भीतर है या नहीं। लंबाई, वायर मैप, हानि, क्रॉसटॉक और विलंब से जुड़े माप अलग अलग प्रकार की कमियों की ओर संकेत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वायर मैप त्रुटि गलत टर्मिनेशन या जोड़ी क्रम की समस्या दिखा सकती है, जबकि प्रदर्शन परीक्षण लंबाई, मोड, कनेक्टर या केबल गुणवत्ता से उत्पन्न सिग्नल समस्याओं को उजागर कर सकता है। पुस्तक की समस्या निवारण दृष्टि लक्षण से कारण तक व्यवस्थित रूप से बढ़ती है। पहले भौतिक संपर्क और टर्मिनेशन जांचे, फिर केबल पथ और घटकों की संगति और उसके बाद अधिक सूक्ष्म सिग्नल मानकों का परीक्षण करें। यह क्रम अनावश्यक उपकरण बदलने से बचाता है। दस्तावेजीकरण का महत्व भी इसी में है। यदि हर रन, पोर्ट, कक्ष और पैचिंग संबंध का स्पष्ट रिकॉर्ड हो तो परिवर्तन या खराबी के समय अनुमान कम लगता है। परीक्षण परिणाम और लेबलिंग मिलकर कैबलिंग प्रणाली को जांच योग्य संपत्ति बनाते हैं, न कि दीवार के पीछे छिपे हुए अज्ञात तारों का जाल। निष्कर्ष में कैबलिंग द कंप्लीट गाइड टू नेटवर्क वायरिंग उन केबल इंस्टॉलरों, ठेकेदारों, नेटवर्क प्रशासकों और पीसी या नेटवर्क तकनीशियनों के लिए सबसे उपयोगी है जिन्हें भौतिक नेटवर्क अवसंरचना के साथ सीधे काम करना पड़ता है। यह उन पाठकों के लिए भी मूल्यवान संदर्भ है जो भवन के भीतर नेटवर्क विस्तार, उपकरण कक्ष की व्यवस्था या पुराने लिंक की समस्या निवारण की जिम्मेदारी लेते हैं। पुस्तक का मुख्य लाभ यह है कि यह सामग्री चयन, संकेत सिद्धांत, स्थापना शिल्प और परीक्षण को अलग अलग कौशल के रूप में नहीं छोड़ती। इसके बजाय यह दिखाती है कि एक निर्णय दूसरे पर कैसे असर डालता है। गलत केबल श्रेणी, लापरवाह टर्मिनेशन या कमजोर दस्तावेजीकरण सभी बाद में गति, स्थिरता और रखरखाव की समस्या बन सकते हैं। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसकी पहचान व्यापकता और फिर उन्मुख दृष्टि है। यह केवल नेटवर्क मानकों की सूची या कनेक्टर लगाने का चित्रात्मक निर्देश नहीं है। यह पाठक को यह तर्क समझने में मदद करती है कि मानक, दूरी, हस्तक्षेप, मार्ग और परीक्षण परिणाम क्यों महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसमें वर्णित कुछ तकनीकी श्रेणियां अपने प्रकाशन काल को दर्शाती है, इसके मूल सिद्धांत अब भी प्रासंगिक है। सावधानीपूर्वक डिजाइन, सही घटक, नियंत्रित स्थापना और प्रमाणित परीक्षण किसी भी भरोसेमंद कैबलिंग प्रणाली की स्थायी आधारशिला है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डेविड बार्नेट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।